ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के तरीकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र।
श्रोताओं, सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज के दिन यानी 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया कि हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री नीरज गुप्ता, और हम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के तरीकों पर खास चर्चा कर रहे हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
मादक पदार्थ पे रोक और नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप सर यही बताएं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इसमें क्या भूमिका है।
देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो NDPS एक्ट 1985 के तहत 1986 में स्थापित किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक नेशनल एजेंसी है जिसका प्रमुख काम जो है वो जितनी भी एजेंसीज नारकोटिक्स सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कार्य कर रही हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना है, ताकि नारकोटिक्स सब्सटेंसेस के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको जो है सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करके और उस लड़ाई को ढंग से लड़ा जा सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके 30 जोनल कार्यालय भी हैं, जो लगभग हर स्टेट में एक जोनल कार्यालय है और वो एक जोनल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी जो है उसका नेतृत्व करता है।
एक और प्रश्न मेरे मन में आता है कि देश में जो सबसे अधिक दुरुपयोग जो होने वाले जो मादक पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं?
देश में जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला मादक पदार्थ है वो गांजा, अफीम वो है, क्योंकि इसकी देश में अवैध खेती भी होती है और यही आज के दिन में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला मादक पदार्थ है। इसके अलावा हमारा देश प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सिंथेटिक ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आज के समय में मार्केट में डिजाइनर ड्रग्स भी अवेलेबल हैं लाइक MDMA, मैथ, LSD, और उनका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। ऑफ लेट ये भी देखा गया है कि जो फार्मा सेक्टर्स में जो दवाइयां हैं, जो पेन किलर हैं और तरह की दवाइयां हैं जिनको उपयोग किया जाता है मेडिसिनल पर्पज के लिए, उनका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है।
अगर हम ये बात करें कि आखिर वो कौन सा आयु वर्ग है और क्या जो जनसांख्यिकी है वो क्या है जो इस नशीली दवाओं का उपयोग अधिक करती है या वो इससे अधिक प्रभावित हैं?
2019 में एक सर्वे किया गया था। सर्वे के अनुसार जो है सभी वर्ग के लोग जो है नशा का उपयोग करते हैं, परंतु उसमें पाया गया था कि अधिकतर जो है जो युवा वर्ग है वो इसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखता है और ज्यादा उपयोग करता है। क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है, जो अगर हम अपना डेमोग्राफिक देखें तो उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए युवाओं का इस तरफ झुकाव जो है वो ज्यादा है और नशे का उपयोग जो है युवा जो जनसंख्या है वो ज्यादा करती है।
जो भारत नारकोटिक्स ड्रग और जो साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट हैं, तो इसमें पनिशमेंट के क्या प्रावधान हैं?
NDPS एक्ट जो है वो बड़ा ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। उसके अंदर जो प्रावधान है, जो भी व्यक्ति ड्रग से रिलेटेड तस्करी में इन्वॉल्व रहता है उसके खिलाफ जो है कड़े सजा के प्रावधान, इवन कुछ केसों में तो वहां पर मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। जो दंड है NDPS एक्ट के हिसाब से वो ड्रग की क्वांटिटी, ड्रग के टाइप और ड्रग के यूसेज पे डिपेंड करता है। NDPS एक्ट में जो है ड्रग की क्वांटिटी के बेस पे पनिशमेंट को डिसाइड किया है और उसको तीन भागों में बांटा गया है मुख्यतः, एक स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम और इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी। जो स्मॉल क्वांटिटी है वो जनरली लोग जो है अपने कंजम्पशन के लिए उपयोग करते हैं, जो पैडलर्स हैं, लोकल पैडलर्स जिनका की थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होती है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोकल लेवल पर यूज करते हैं, वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में फॉल करता है। और जो कमर्शियल क्वांटिटी है, जो कि ये ड्रग लॉर्ड्स हैं, नेटवर्क हैं बड़े बड़े, वो उसको जो है तस्करी करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो गांजा जो है उसकी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो 1 kg से कम है, उसकी इंटरमीडिएट क्वांटिटी जो है 1 kg से 20 kg तक है, तथा जो कमर्शियल क्वांटिटी है वो 20 kg से ऊपर है। और अगर मैं दंड की इसमें बात करूं तो जो भी व्यक्ति जो है स्मॉल क्वांटिटी वाले केसेस में इन्वॉल्व रहता है उनके लिए सजा जो है वो 1 साल तक है, जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी के केसेस में इन्वॉल्व है उनकी सजा जो है अप टू 10 years है, और जो कमर्शियल क्वांटिटी केसेस की तस्करी में इन्वॉल्व है उनकी सजा जो है 10 साल से ऊपर है। इसके अलावा NDPS एक्ट के अंदर जो बेल के प्रोविजन है, बेल जो ग्रांट करती है को, उसके प्रोविजन जो है वो बहुत ही सख्त है, और उसकी वजह से जो है लगभग 2 से 3 साल तक जो भी लोग कॉमर्शियल क्वांटिटी केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं उनको बेल नहीं मिलती है और इस बीच में कई बार जो है उनका कन्विक्शन भी हो जाता है। इसके अलावा जो है एनडीपीएस एक्ट में जो है जितनी भी आप प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक हाउस और शॉप और एनी अदर थिंग और मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कार और ज्वेलरी जो भी आप जो ड्रग की कमाई से इकट्ठा करते हैं उसको फ्रीज और सीज करने का भी प्रावधान है और इस प्रावधान पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है पिछले 5 सालों से काफी अच्छा कार्य कर रहा है और जो स्टेट की जितनी भी एजेंसीज हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिलकर जो इस तरह के तस्कर हैं जो कि इलीगली इस तरह की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं ड्रग मनी से उसको सीज और फ्रीज करने का कार्य भी कर रहा है।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करने की बात करें और अगर हम आपसे जानना चाहें तो एनसीबी की हालिया पहल आपको इसमें क्या क्या रही है।
एनसीबी जो है जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी है, उसके अलावा एनसीबी जो है बड़े बड़े जो केस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, जहां भी सप्लाई साइड में बड़े बड़े तस्करी वाले केस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन भी करती है। जो नशीली दवाओं का उपयोग रोकने के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है सप्लाई रिडक्शन, जहां पर बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसको चार्जशीट किया जाता है। दूसरा है डिमांड रिडक्शन और तीसरा है हार्म रिडक्शन। तो एनसीबी इन 3 क्षेत्रों में कार्य करती है, समन्वय भी करती है, जितनी भी एजेंसीज इन कार्यों में इन्वॉल्व है उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करती है। जो डिमांड रिडक्शन की तरफ जो है एनसीबी ने रिसेंटली जो है एक स्पेशल ड्राइव चलाई है जहां पे कि लोगों के अंदर जागरूकता लाई जा सके और जागरूकता लाने के बाद उनको ड्रग की तरफ उनका रुझान कम किया जा सके जिससे कि ड्रग की डिमांड रुक जाए। डिमांड रुकेगी तो ये ऑटोमेटिकली सप्लाई पर भी इफेक्ट डालेगी और सप्लाई भी कम।
जैसा कि आपका अपना एक अनुभव की रहा है, आपने बहुत बारीकी से देखा है कि कैसे लोग इसमें हुए हैं एडिक्ट, समाधान कैसे मिला है, तो इन चीजों को आपने बहुत ही करीब से देखा होगा काम करते हुए। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें अगर ड्रग एडिक्ट हो ही जाए तो फिर उसे बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है ये एक मेडिकल कंडीशन है। क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है तो इसको जो है हम टैबू ना समझें, उसको जो है समाज में जो है उसको दुत्कारे ना, और परिवार वाले भी उसको समझें कि ये एक मेडिकल कंडीशन है और इस मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए इलाज संभव है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जगह जगह पर जो है नशा मुक्त केंद्र और रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हुए हैं, इसके अलावा काउंसलिंग भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति घर में अगर ड्रग एडिक्ट है तो उसको समझा जाए कि ये जो है उसकी एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज कराना है। उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक हेल्पलाइन भी है 1-444-6, उस हेल्पलाइन पे आप कॉन्टैक्ट करें। उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद वो काउंसलिंग जहां पर होती है उसकी जानकारी आपको देंगे, साथ साथ देश में जितने भी उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर है उनकी जानकारी वहां से मिलेगी। आप उनकी एडवाइस पर काउंसलिंग या रिहेबिलिटेशन सेंटर का उपयोग करें और उस व्यक्ति को नशे की लत से बाहर निकालें।
थोड़ा सा अपने परिवार की बात की, तो अगर हम इस पे थोड़ा सा परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को अगर यानी ये बताना चाहें कि भाई आप अपना कर्तव्य निभाइए और समाज में ऐसे लोगों को अगर वो बचाना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए?
सबसे पहले तो समाज में और परिवार के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस तरह से ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसको जो है हम प्यार से समझाएं, उसको कॉन्फिडेंस मिले और उसको ये समझाएं कि तुम्हारी ये मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है और इसका इलाज संभव है। जब उस व्यक्ति को ये होप दिखेगी कि वो ठीक हो सकता है तो वो उस तरफ कार्य भी करेगा। साथ ही साथ परिवार की और पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उस समय जो है वो उन पर नजर रखे, उनके बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करे, उनको देखे कि उनका बिहेवियर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस तो नहीं दिखा रहा, लाइक बच्चा जो है आइसोलेशन में तो नहीं जा रहा, बच्चे के पहले अच्छे मार्क्स आते थे अब कम मार्क्स आने लगे हैं, या वो ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल से गायब रहने लगा है। अगर इस तरह का बिहेवियर कोई बच्चा दिखाता है जो स्कूल में पढ़ता है तो उस पर नजर रखे, इंक्वायरी करके समझे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है बच्चा पीयर प्रेशर के अंदर और किसी और अन्य कारण से ड्रग्स की लत में पड़ गया हो, और अगर इस तरह का कुछ निकल के आता है तो घबराएं ना। घबराने की बजाय उसको समझें, उससे बातचीत करें और बातचीत करने के बाद उसको एक विश्वास दिलाएं कि ये सब कुछ छूट सकता है और उसके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, काउंसलिंग कराना, रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना, उन सबको प्रॉपरली फॉलो करें।
जी हाँ जी हाँ, एक और लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र है तो कहाँ है, कैसे पहुंचे हम, तो इसके लिए आप क्या कुछ लोगों को बताएंगे?
इसके लिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, उन्होंने जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी मैपिंग की हुई है और उनकी एक हेल्पलाइन है 1-444-6। तो जब भी आप उस हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो नियरेस्ट नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है, कैसे है और कैसे फंक्शन कर रहा है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
जी, एक और प्रश्न ये आता है कि मान लेते हैं अगर किसी के पास कहीं से किसी भी तरीके से मादक पदार्थ आ गया है और वो साझा करना चाहता है, सरकार को बताना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है और कोई क्या इसके लिए कोई पुरस्कार भी है सरकार की तरफ से? इसमें कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए आप।
अगर किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की जानकारी है तो वह एनसीबी के जो जोनल ऑफिस है उनका कंट्रोल रूम नंबर है, उस पर उसकी जानकारी साझा कर सकता है। इसके अलावा एनसीबी की जो वेबसाइट है उस पर सबमिटेड टिप करके एक ऑप्शन है, उस पर जाकर उस व्यक्ति के बारे में, उस ड्रग्स के बारे में जानकारी साझा कर सकता है। इसके अलावा वो स्टेट पुलिस के 112 नंबर है, उन पर भी जानकारी साझा कर सकता है और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी डिक्लेयर किए हैं, उन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। जब भी वो जानकारी देगा यह जानकारी पूर्णतः गुप्त रखी जाती है, उसका नाम भी गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जानकारी देता है तो सरकार ने उसके लिए रिवॉर्ड स्कीम भी कर रखी है। ये रिवॉर्ड स्कीम जो है वो टाइप ऑफ ड्रग एंड क्वांटिटी ऑफ सीजर पर डिपेंड करती है और जब रिवॉर्ड उस व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसका जो है नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा।
एक चीज और, ये एनसीबी की जो कुछ खास उपलब्धियां हैं मादक पदार्थों पर रोक और इस पर नियंत्रण को लेकर के और जो पहल हैं इसको लेकर के क्या आप कुछ बताना चाहेंगे?
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनसीबी जो है एक नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी है और वो सारी जितनी भी स्टेट में एनटीएफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनी हुई है, स्टेट पुलिस है, जितनी भी और एजेंसीज हैं, डीआरआई है, कस्टम एंड एक्साइज है, उनके साथ जो मिलके जो है वो जो है कोऑर्डिनेशन करता है और ड्रग्स का जो भी परिवेश होता है भारत में उस पर स्ट्रेटेजी बनाकर उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कराता है। तो पिछले दिनों एनसीबी ने जो है जो लोग जो हैं ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व हैं तो बड़े बड़े केसों को पकड़ने का प्रयास किया है तथा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाया है। उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति नीचे नशा कर रहा है, छोटे छोटे लोग, उनसे जो व्यक्ति तस्करी करता है या उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता, उसके बाद जो उसका गैंग लीडर है उस तक कैसे पहुंचा जाए, उसी तरह से जो टॉप में जो है जो किंग पिन है, जो ड्रग्स नेटवर्क का किंग पिन है उससे और जो उसका नेटवर्क है उस तक कैसे पहुंचा जाए, उस अप्रोच को अपनाया है जिससे कि जो है जो एक नेटवर्क है पूरी तरह से वो पूरी तरह से बस्त हो और वो नेटवर्क कंप्लीट तरह से खत्म हो। इसके अलावा जो नेटवर्क है जब वो इस ड्रग्स के कारोबार में इन्वॉल्व रहता है तो वो कुछ प्रॉपर्टी भी अर्जित करता है, इमोबिल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, उनका सबका फ्रीजर, उस पर भी एनसीबी ने काफी ध्यान दिया है और पिछले दिनों इसके काफी सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं।
आप अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
तो मेरा संदेश सभी वर्ग के श्रोताओं को यही है कि नशे की लत से पूरी तरह से दूर रहें। नशे की लत न केवल उनकी हेल्थ को खराब करती है बल्कि उनको, उनके परिवार को, समाज को और देश को, सबको खराब करती है। हमारा भारत देश जो है एक प्रगतिशील देश है, युवाओं को चाहिए कि वो नशे की लत में बिल्कुल ना पड़े और अपनी सेहत का पूर्णतः ध्यान रखें।
जी हाँ बिल्कुल नीरज जी, हमारे श्रोताओं को सटीक, तथ्यपरक और ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के तरीकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।